नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम पुस्तक पर गहराई से बात करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कृति है ये
जी।
नाम है युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग दो।
हाँ, और ये उस विशेष श्रृंखला का हिस्सा है 1988 से 90 के दौर की वो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला।
बिल्कुल, जिसके बारे में पूज्य गुरुदेव ने जहाँ तक मुझे याद है वंदनीय माताजी से कहा भी था कि मेरा ज्ञान शरीर इसी साहित्य में जीवित रहेगा।
सही कहा, और उनका आग्रह था कि इसे उनके इस ज्ञान शरीर को सब लोगों तक पहुँचाया जाए, हर बच्चे तक।
तो आज हम इसी पुस्तक को समझने की कोशिश करेंगे, इसका असल में उद्देश्य क्या है।
देखिए, उद्देश्य बहुत साफ है। आज समाज में जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ना, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उनका हल सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं होगा, उसके लिए अंदर की शक्तियां मतलब प्रतिभा, उसे निखारना पड़ेगा, और ये पुस्तक वही रास्ता दिखाती है।
प्रतिभा यानी हमारी अपनी भीतरी शक्ति।
हाँ बिल्कुल, ये कहीं बाहर से नहीं लानी, वो हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाना है, परिष्कृत करना है।
तो शुरुआत कहाँ से होती है इस परिष्कार की? पूज्य गुरुदेव ने जीवनी शक्ति का जिक्र किया है ना?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत अच्छी तुलना की है। जैसे मोटर गाड़ी है,
हाँ
बिना पेट्रोल या आजकल कहें तो बिजली के,
हाँ
वो क्या है? बस लोहा है।
सही बात।
वैसे ही ये शरीर, इसके अंदर जो प्राण विद्युत है, जो जीवनी शक्ति है, उसके बिना ये भी बस एक ढांचा मात्र है।
अच्छा, तो मतलब हमारा पूरा स्वास्थ्य, तन का भी और मन का भी, इसी जीवनी शक्ति पर निर्भर है।
यही तो मूल बात है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सारे रोगों की जड़ कहीं ना कहीं इस जीवनी शक्ति की कमी ही है।
हम इलाज करवाते हैं एलोपैथी से, आयुर्वेद से, वो लक्षणों पर काम करते हैं, लेकिन असली जड़ तो वो अदृश्य ऊर्जा है।
और यही शक्ति जब शरीर में होती है तो ओजस कहलाती है, सेहत स्फूर्ति देती है।
अच्छा,
जब यही मस्तिष्क में पहुंचती है तो तेजस बन जाती है, विचार स्पष्ट होते हैं, चेहरे पर चमक आती है।
और तीसरा?
और जब ये अंतःकरण में मतलब हमारे अंदरूनी भाव जगत में प्रकट होती है तो वो वर्चस है, आत्मविश्वास, प्रभाव, और इन्हीं तीनों का, ओजस, तेजस, वर्चस का संतुलन ही असल में प्रतिभा है।
ये तो बहुत गहरी बात है। जीवनी शक्ति हो गई आधार, लेकिन सिर्फ ऊर्जा होना ही काफी है क्या? या उसे दिशा देने वाली इच्छा शक्ति भी चाहिए? पूज्य गुरुदेव ने मनोबल पर भी काफी जोर दिया है।
हाँ बिल्कुल, मनोबल मतलब विल पावर, और इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड की एक नारी पेट्रिस मेरी, उनका उदाहरण दिया है। बड़ा ही सशक्त उदाहरण है वो।
हाँ, मैंने पढ़ा है वो कैंसर वाली बात ना?
जी, डॉक्टर ने कह दिया था कि बस 6 महीने हैं, कैंसर था उनको, पर उस नारी ने क्या किया, अपनी चिंता छोड़ दी।
अच्छा,
और संकल्प लिया कि दूसरों की मदद करनी है, अस्पताल के लिए एक नई मशीन, स्कैनिंग मशीन, वो जुटाने का बीड़ा उठाया।
अरे वाह।
और उस काम में वो ऐसी रम गई कि अपनी बीमारी जैसे भूल ही गई। और हुआ क्या, 6 महीने बाद जब जांच हुई,
क्या हुआ?
कैंसर का नामो निशान नहीं था।
सच में ये तो कमाल है। मतलब मनोबल, संकल्प, वो दवा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।
बिल्कुल, ये एक असाधारण उदाहरण जरूर लगता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सिद्धांत सबके लिए है। ये मन की वो ताकत है जो शरीर की हालत बदल सकती है।
लेकिन क्या ये मतलब हर कोई कर सकता है, या ये कोई खास लोगों की बात है?
नहीं, पूज्य गुरुदेव याद दिलाते हैं ना हनुमान जी का प्रसंग।
हाँ, जामवंत वाला।
हाँ, जामवंत ने उन्हें उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई, और फिर जो काम असंभव लग रहा था, समुद्र लांघना, वो संभव हो गया।
सही।
चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण भी है, मनोबल और संकल्प से ही तो पूरा इतिहास बदल दिया उन्होंने। तो बात है अपने अंदर की सोई शक्तियों को जगाने की, मनोबल वही काम करता है।
तो जीवनी शक्ति हो गई, मनोबल हो गया, अब बात आती है आत्मबल की।
बिल्कुल,
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भारत की जो महानता थी उसका आधार यही आत्मबल रहा है।
योग और तप से पाया हुआ।
बिल्कुल।
और ये आत्मबल व्यक्तित्व में एक प्रामाणिकता लाता है, एक तेज लाता है। लेकिन यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं समझना चाहिए।
अच्छा,
तो फिर क्या है योग का मतलब?
पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि योग के दो हिस्से हैं। एक है तपश्चर्या, मतलब संयम, अनुशासन,
हाँ
अपनी इंद्रियों को, मन को साधना।
ठीक है।
और दूसरा है योग साधना, मतलब अपने मन को छोटे दायरे से निकालना, स्वार्थ से ऊपर उठकर
हाँ
बड़ी चेतना से जुड़ना। और प्रतिभा निखारने के लिए दो गुण उन्होंने खास बताए हैं।
कौन सा?
एक तो साहसिकता,
तो
मतलब हिम्मत, चुनौतियों से लड़ने का जज्बा।
हाँ
और दूसरी सुव्यवस्था, मतलब चीजों को ठीक ढंग से, सलीके से करने की क्षमता।
साहसिकता और सुव्यवस्था,
और ये गुण भी अंदर से ही विकसित होते हैं।
हाँ,
और सबसे बड़ा दुख, पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वो है आत्मविस्मृति। इंसान भूल गया है कि उसके अंदर कितनी अपार क्षमता है, खुद को बेचारा कमजोर मानकर बैठा है।
सही कहा, जरूरत है इसी भ्रम से बाहर निकलने की।
तो हमने जीवनी शक्ति, मनोबल, आत्मबल की बात समझी, पर सवाल ये है कि इनको निखारें कैसे? क्या पूज्य गुरुदेव ने कुछ तरीके भी बताए, कुछ प्रैक्टिकल उपाय?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, कुछ विज्ञान सम्मत मतलब साइंटिफिक तरीके भी बताए हैं जिनसे इन भीतरी शक्तियों को जगाया जा सके।
अच्छा, जैसे कुछ उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे एक है स्वसंकेत, ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं, खुद को सही सकारात्मक निर्देश देना,
अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना।
बिल्कुल। फिर है प्राणाकर्षण प्राणायाम, इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड में जो प्राण ऊर्जा फैली हुई है उसे अपने अंदर खींचना,
धारण करना।
हाँ, इसके अलावा दर्पण साधना है, खुद को आईने में देखकर आत्मावलोकन करना, प्राणवान लोगों का साथ करना, उनके सानिध्य में रहना।
नाद योग का भी जिक्र है शायद, संगीत वाला।
हाँ, नाद योग, ध्वनि और संगीत का उपयोग, और प्रायश्चित भी है अपनी गलतियों को सुधारना, और साथ में सात्विक आहार जैसे अंकुरित अन्न, वनौषधियां लेना, ये सब तरीके मदद करते हैं।
तो मतलब कई सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं।
जी, तो सार यही निकलता है इस पूरी चर्चा का और इस पुस्तक का भी कि असली शक्ति, असली खजाना वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं खोजना है।
हाँ।
जीवनी शक्ति को बढ़ाना है, मनोबल को मजबूत करना है, आत्मबल को जगाना है, और वो दो गुण
साहसिकता और सुव्यवस्था,
हाँ, उनको अपनाना है। बस यही है प्रतिभा परिष्कार का रास्ता।
बिल्कुल। और चलते चलते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, जो पूज्य गुरुदेव के इसी ज्ञान शरीर से हमें मिलता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति, हर एक इंसान अपनी इन सोई हुई शक्तियों को जगाने का सचमुच प्रयास करे, जैसा रास्ता पूज्य गुरुदेव ने दिखाया है, तो सिर्फ उस व्यक्ति का अपना जीवन ही नहीं बदलेगा, बल्कि हमारे पूरे समाज में आप सोच सकते हैं कैसा अद्भुत, कैसा सकारात्मक बदलाव आ सकता है।
हाँ, ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात।
इस पर विचार करने की जरूरत है हम सब।